लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव के रूप में हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग भूमिकाएं अदा करते हैं। उन भूमिकाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक होने की भी है, जहां हम अपने को या किसी दूसरे को जीवन की शिक्षा प्रदान करते हैं। हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को एक अच्छा, सच्चा और आदर्श जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं। अपने जीवन की इस भूमिका को अदा करने के फलस्वरूप हमारी चाह यही होती है कि हमारे द्वारा बतलाए गए मार्ग, सलाह को सुनने वाले लोग हमारी बातों को समझें, जानें और हमारी शिक्षा के अनुरूप जीवन संचालित करें। यही कारण है कि अपनी बातों को लोगों के समक्ष रखने के उपरांत हम उनसे यह अवश्य ही पूछते हैं कि हमारी बातें उन्हें समझ में आईं या नहीं। उनका सकारात्मक उत्तर हमें एक तरह से संतुष्टि प्रदान करता है। हमें और भी खुशी तब होती है जब वे हमारे शिक्षा को अपने जीवन में अमल करते हुए अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाते और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। श्रोताओ, सत्र में ही सामान्य रविवार के पाठों का संदर्भ यही है। यीशु ख्रिस्त अपने पीछे आने वालों को, अपने सुनने वालों को ईश्वरीय राज्य की शिक्षा विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से देते हैं। आज का सुसमाचार पुनः तीन दृष्टांतों का जिक्र करता है, जिसके द्वारा वे हमें अपने पिता के राज्य का मर्म समझाने की कोशिश करते हैं। वे अपने शिष्यों को और हमें भी यह पूछते हैं कि क्या हम उनकी बातों को, जिन्हें वे दृष्टांतों के माध्यम हमारे सामने रखते हैं, समझते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि क्या हम स्वर्ग राज्य के रहस्य को, जो साधारण कहानियों के रूप में मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें सुनाया जाता है, समझते हैं। क्या हम उन्हें अपने जीवन में अमल करते हैं? क्या हम दृष्टांतों के माध्यम ईश्वर से मिलने वाली खुशी और परम आनंद का अनुभव करते हैं?
स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है, तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है, एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं, तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में विवेकी बनने की कृपा दे, जिससे हम जीवनदायी कीमती वचनों को अपने हृदय में संजो कर रख सकें, उन पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वरीय कृपाओं को अपने लिए पहचान सकें, जो हमें जीवन की पुरानी और नई चीजों को निकालकर दूसरों को सहायता प्रदान करने में मददगार सिद्ध होती है। श्रोताओं, राजाओं के पहले ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए राजा सुलेमान के बारे में जिक्र करता है, जिन्हें ईश्वर दिखलाई देते और अपने लिए कुछ मांगने को कहते हैं। राजा सुलेमान अपने लिए विवेक की मांग करते हैं, जिससे वे अपने लोगों के लिए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन उचित रूप में कर सकें। उनकी इस मांग पर ईश्वर खुश होते और उन्हें बाकी वे सारी चीजें भी प्रदान करते हैं जो ईश प्रजा की देख रेख हेतु उन्हें जरूरत थी। इस पाठ की छाया में यदि हम चिंतन करें तो ईश्वर ने राजा सुलेमान को अपने कार्यों हेतु नियुक्त किया था और उनकी नेक सोच के कारण उन्हें अपनी आशीष और कृपा दानों से परिपूर्ण कर दिया। यह इस धरती पर हमारे बुलावे को देखने हेतु निमंत्रण देता है। ईश्वर ने हमें भी अपने कार्यों के निर्वहन हेतु यह जीवन दिया है और राजा सुलेमान की भांति वे हमें भी अपनी आशीष और कृपा दानों से भर देते हैं, लेकिन शायद हम ईश्वर के अद्वितीय कृपा दानों का एहसास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी निगाहें सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। ईश्वर ने हमें कई तरह के वरदानों से भर दिया है, लेकिन हम उनका उपयोग दूसरों की सेवा करते हुए ईश्वर की महिमा करने के बदले अपनी महिमा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की कामना करते हैं। हम अपने में इतने आसक्त हो जाते कि ईश्वरीय महिमा की खोज करने के बदले हम अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में इस जीवन को गंवा देते हैं। राजा सुलेमान के मनोभावों को यीशु अपनी शिक्षा के दौरान कहते हैं, सबसे पहले ईश्वरीय राज्य की खोज करो और जीवन की बाकी अन्य सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। श्रोताओं, राजा सुलेमान के द्वारा ईश्वर से विवेक की मांग हमें उनके मनोभावों से रूबरू कराती है। ईश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति स्वरूप वह अपने कर्तव्यों और दायित्वों की गंभीरता को समझते हैं, अतः वे नम्रता में प्रज्ञा की मांग करते हैं। उनके यह मनोभाव हमें यही दिखलाते हैं कि वे दूसरों की सेवा हेतु अपने को समर्पित करने की चाह रखते हैं। ईश प्रजा हेतु भलाई की इच्छा रखना उन्हें ईश्वर की नजरों में प्रिय बनाता है। इस तथ्य को रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ भी पुष्ट करता है। वे जो ईश्वर को प्रेम करते और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। इस भांति ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को पापों से मुक्त करते, जिससे वे पुत्र के प्रतिरूप बनकर उनकी महिमा को अपने कार्यों में प्रकट करें। इस रहस्य को यीशु सुसमाचार में दृष्टांतों के माध्यम प्रकट करते और अपने पिता के राज्य की स्थापना हेतु हमें अपने सहयोगी स्वरूप हाथ बटाने का निमंत्रण देते हैं। स्वर्ग राज्य का रहस्य हमारे हृदय रूपी खेतों में छिपा हुआ धन है, जिसे प्राप्त करने हेतु हमें अपने जीवन की बाकी अन्य सारी चीजों का परित्याग करने की आवश्यकता है। यह वह कीमती मोती है जिसको पहचानने के बाद उसे प्राप्त करने हेतु हम अपना सब कुछ छोड़ देने को उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि जीवन का आनंद उस मोती के सानिध्य में यीशु ख्रीस्त के साथ रहने में मिलती है। इस तरह अपने विवेक में उत्तम मोती की प्राप्ति हेतु इस जीवन को जीना हमें रद्दी मछली नहीं वरन अच्छी मछली बनाता है, जिसे स्वयं यीशु ख्रीस्त चुनकर अपने स्वर्गीय राज के बर्तन में जमा करते हैं। श्रोताओं, पवित्र आत्मा हमें अपनी प्रज्ञा से भर दें, जिससे हम स्वर्गीय राज्य के रहस्यों को जानें और समझें, तथा अपने हृदय के भंडार से अच्छी चीजों को निकालें, जिनके द्वारा त्रित्व में ईश्वर की महिमा होती है।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 25 जुलाई के ट्वीट संदेश में याद दिलाया कि यीशु हमारे साथ चलते हैं। उन्होंने संदेश में लिखा, सच्चा तीर्थयात्री सबसे धीमे व्यक्ति की गति से चलने में सक्षम होता है। यीशु ऐसा कर सकते हैं। यीशु हमारी तीर्थयात्रा के साथी हैं। वे हमारी परिस्थिति का सम्मान करते हैं और गति तेज करने का दबाव नहीं डालते। वे धैर्यवान प्रभु हैं। 7 साल पहले 26 जुलाई को संत पापा फ्रांसिस ने ब्राजील में विश्व युवा दिवस के दौरान एक अपील जारी की थी। इस अपील में उन्होंने युवाओं और बुजुर्गों को आपस में संवाद करने हेतु प्रेरित किया था। उन्होंने इसके बाद भी कई बार इसे दोहराया है। कोविड-19 महामारी के समय यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जब इन पीढ़ियों को शारीरिक दूरी बनाकर रहना है। 26 जुलाई 2013 को संत पापा फ्रांसिस ने रियो डी जनेरियो में देवदूत प्रार्थना का पाठ करते हुए विश्व भर के हजारों युवाओं को संबोधित किया था। विश्व युवा दिवस के अवसर पर विश्व भर के युवा रियो डी जनेरियो में एकत्रित थे। 26 जुलाई को कलीसिया संत अन्ना और संत जोआकिम का पर्व मनाती है, जो यीशु के नाना नानी और कुंवारी मरियम के माता पिता थे। अपरिचिता दस्तावेज का हवाला देते हुए संत पापा ने इस अवसर पर जोर दिया था कि बच्चे और बुजुर्ग मिलकर लोगों के भविष्य का निर्माण करते हैं। बच्चे इसलिए भविष्य का निर्माण करते हैं क्योंकि वे इतिहास को आगे बढ़ाते हैं, और बुजुर्ग इसलिए क्योंकि वे अपने जीवन के अनुभव एवं प्रज्ञा को हस्तांतरित करते हैं। युवा और बुजुर्ग, दादा दादी और पोता पोती जैसे द्विपद संत पापा फ्रांसिस के परमादर्शी काल में लगातार एक विशेषता बन गई है, जिसको वे अपने हाव भाव, भाषणों, आम दर्शन समारोह और आकस्मिक मुलाकातों आदि में प्रकट करते हैं, विशेषकर प्रेरित यात्रा के दौरान। संत पापा ने इस बात को दुख के साथ गौर किया है कि युवा और बुजुर्ग ही बहुधा फेंकने की संस्कृति के शिकार बनते हैं, जबकि वे एक साथ बेहतर भविष्य के रास्ते की खोज कर सकते हैं। उन्होंने 2 फरवरी 2018 को समर्पित धर्म समाजों के लिए ख्रिस्ताग अर्पित करते हुए प्रवचन में कहा था, बुजुर्गों के पास ही कुंजी है। जड़ के बिना विकास संभव नहीं है और ना ही नई कली के बिना फूल खिलना संभव है। संत पापा के लिए युवाओं और बुजुर्गों के बीच मुलाकात एक स्वप्न का स्थान है। कुछ मायनों में यह अनुचित, आश्चर्यजनक
और लगभग अभिसरण प्रतीत हो सकता है। फिर भी जैसा कि महामारी ने अनुभव दिलाया है, यह वास्तव में हमारा स्वप्न है जिसने दादा दादी और पोते पोतियों को एक साथ रखा है, जबकि उन्हें अचानक अलग होना पड़ा है और जिससे एकाकीपन का बोझ बढ़ गया है। संत पापा ने स्वप्न के आयाम पर प्रकाश डाला है जिसकी जड़ें बाइबल में गहरी हैं। संत पापा ने कई बार नबी योएल की शिक्षा की याद दिलाई है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे।
वाटिकन न्यूज के एक साक्षात्कार में अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन USCCB की धार्मिक स्वतंत्रता समिति के अध्यक्ष ने कैथोलिक संस्थाओं पर हिंसक हमलों के लिए कलीसिया की प्रतिक्रिया के रूप में प्यार करने की आज्ञा को शामिल करते हुए समाधान को प्रोत्साहित किया। पुलिस हिरासत में मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अशांत महीनों का जिक्र करते हुए मियामी के महाधर्माध्यक्ष थॉमस वेंस्की ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों में दैनिक गड़बड़ी देखी गई है जो अभी भी चल रही है और अपवित्रीकरण के कार्य एवं संपत्ति को नष्ट करना शामिल है। महाधर्माध्यक्ष वेंस्की कहते हैं कि निरंतर हिंसा और बर्बरता चिंता का विषय है। हालांकि वे कहते हैं, जैसा कि हम समझते हैं कि इस तरह की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं देना चाहिए और इसलिए हम एक समाधान की तलाश करते हैं जो हमारे पड़ोसी को प्यार करने की आज्ञा को शामिल करता है। उन्हें सच्चाई के साथ प्यार करना है और उन्हें दूसरों के लिए वही करने हेतु प्रोत्साहित करना है जैसा वे दूसरों से खुद के लिए कराने की इच्छा रखते हैं। उधर भारतीय धर्माध्यक्षों ने सरकार से अपील की है कि देश के विशिष्ट कानून के माध्यम से आंतरिक प्रवासियों की जितनी संभव हो सके जल्द से जल्द मदद की जाए। वे COVID-19 महामारी के कारण भूख और परेशानी एवं अन्य पीड़ा सह रहे हैं। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के तहत प्रवासी आयोग के सचिव फादर जैसन वाडासारी ने कहा कि धर्माध्यक्षों ने 1979 के विशिष्ट कानून के माध्यम से आंतरिक प्रवासियों की जितनी जल्दी संभव हो सके उनकी मदद करने की अपील की है। विशिष्ट कानून वास्तव में आंतरिक प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और श्रमिक स्वास्थ्य की गारंटी देता है। सरकार पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ उन प्रवासियों की मदद करे जो COVID-19 महामारी के कारण शहर छोड़कर अपने गांव वापस लौट आए थे। काम न मिलने की वजह से वे पुनः शहरों की ओर लौट रहे हैं। धर्माध्यक्षों ने कहा, हमने लॉकडाउन में हुए सामूहिक पलायन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा देखी है। 1979 का कानून उनके स्वास्थ्य संकट पर प्रकाश डालता है। इन लोगों की सुरक्षा को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि उनका पलायन एक वास्तविक मानवीय संकट बन गया है। कई प्रवासी श्रमिकों को सड़कों और रेलवे लाइनों में कई सौ किलोमीटर चलना पड़ा और बहुत कठिनाई के साथ वे अपने घर पहुंचे थे। फादर जैसन ने कहा कि पीड़ितों की गिनती नहीं की जाती। उदाहरण के लिए मई महीने में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मालगाड़ी के चपेट में आने से कम 16 प्रवासियों की मौत हो गई। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। ये प्रवासी मुख्य रूप से भवन निर्माण कारखानों और ईंट भट्टों में कार्यरत वे मौलिक अधिकारों जैसे आवास, भोजन सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।